समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको मेरा नमस्कार।
नमस्कार सरफिरोजी, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, एंड हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स। यू आर ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम शगुन चोपड़ा एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट सरफिरोजी, एंड फॉर यू वी हैव अ लॉट मोर इन स्टोर। सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, एंड ऑल ऑफ दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। And we begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Bangladesh counterpart Sheikh Hasina in New Delhi. A number of agreements signed to enhance mutual cooperation.
वित्त मंत्री सीतारामन ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया.
53rd meeting of GST Council underway in New Delhi.
मौसम विभाग का अगले 4 दिन में केरल, कर्नाटक और गोवा में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की आशंका।
इन आर्चरी, इंडिया ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर एंड अदिति स्वामी क्लिंच गोल्ड इन कंपाउंड टीम इवेंट एट द एंटालिया आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 इन तुर्की।
और T20 विश्व कप क्रिकेट में अपने दूसरे सुपर 8 मुकाबले में आज शाम भारत का मैच बांग्लादेश से।
And now it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about World Rainforest Day.
और शगुन, जब बात आती है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे या वर्षा वनों की, तो मुझे दो लाइन्स याद आ रही हैं कि तुम लगाते चलो अश्जार, जिधर से गुजरो उसके साये में जो बैठेगा दुआ ही देगा।
वेरी नाइस।
शगुन, कई बार हम अपने आसपास की चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब आपको उनकी इम्पोर्टेंस तब तक समझ नहीं आती जब तक आपको उनकी कमी ना करने लगे। मतलब आप इमेजिन करके देखिए कि आप किसी खुले इलाके से गुजर रही हैं और गर्मी का मौसम है, जैसा कि आजकल चल रहा है, गर्मी बहुत है दिल्ली में भी, और बिल्कुल तो ऐसे में आपको कई बार लगता है कि आप किसी ठंडे पेड़ की छाया में बैठे हैं, आपको ठंडक मिले और सोचिए आपके आसपास कोई पेड़ हो ही ना, ऐसे में आपको कैसा लगेगा। तो इसी पेड़ों की, वर्षा वनों की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ये वर्षा वन वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जा रहा है।
डेफिनेटली, यस।
और वर्ष 2021 में विश्व वर्षा वन दिवस शिखर सम्मेलन को दुनिया भर के सभी क्षेत्रों के लोगों और संगठनों को एक साझा उद्देश्य के साथ बातचीत और सामुदायिक निर्माण के लिए एक साथ लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और तब से लेकर हर साल ये दिवस मनाया जा रहा है।
And on 22nd June, which is today, it's observed annually, the World Rainforest Day. It is a global observance which is dedicated to raising awareness about the significance of rainforests and promoting efforts for their protection and conservation. It is an opportunity for us to reflect on the critical role that rainforests play in maintaining global biodiversity and mitigating climate change and supporting the livelihoods of millions of people worldwide.
और शगुन, मतलब ये चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि धरती पर जीवन के लिए इंसानों और हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उन सभी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा अगर हम लोग, वर्षा वन है, हमारे आसपास के पेड़ को अगर संरक्षित ना करें। तो दुनिया भर में मौजूद वर्षा वन के कारण ही आज इंसानों और जीवों तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है।
राइट।
और इस साल दुनिया भर के अधिकांश देश भीषण गर्मी से परेशान हैं। मतलब नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है उससे काफी ज्यादा हमारा जो डेली का टेम्परेचर है पहुंच चुका है।
राइट, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट।
बिल्कुल, जिन देशों में मतलब जिन देशों को या हमारे देश के जिन राज्यों को ठंडी जगह माना जाता था, अब वहां पर भी मतलब तापमान बढ़ने लगा है।
वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट।
बिल्कुल, और इसकी सबसे बड़ी वजह वैश्विक रूप से जंगलों की कटाई है। तो आज जैसा कि हमने बताया, आज यानी 22 जून के दिन वर्षावन दिवस मनाया जाता है। ये दुनिया भर के वर्षावनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। आज धरती पर स्वच्छ पानी, हवा और ऑक्सीजन अगर इंसानों तक पहुंच रहा है तो ये घने जंगलों के कारण ही संभव है। लेकिन शगुन, इनकी कमी के कारण दुनिया भर के जो लोग हैं, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और एक्सपर्ट के मुताबिक अभी पेड़ पौधों का संरक्षण करके इसके असर को कम किया जा सकता है। अगर आज धरती पर साफ पानी और हवा हम तक पहुंच रही है, ऑक्सीजन हम तक पहुंच रहा है, तो ये पेड़ों के कारण ही संभव है।
यस, एंड सर फिरोजी, आई थिंक द important reason that this is all happening, which we are discussing, you know, deforestation and stuff like that. We have to plant a lot more trees, you know, every year, and that can make a huge difference and impact, right? Because forests, they are an integral part of our lives and we must do all that to save them.
उनको बचाने के लिए हमें हर चीज करनी चाहिए.
Exactly, right. And you know, Sir Firozi, we should talk about the history of world rainforest day, right? The origins of World Rainforest Day, they can be traced back to 2017 when Rainforest Partnership, a non-profit organization committed to preserve rainforests and empower local communities, they founded this day. The inaugural celebration, it focused on the theme, emphasizing the need for collective action to protect rainforest and restore damaged ecosystems. And since then, World Rainforest Day has gained momentum, with individuals, organizations and communities worldwide joining forces to raise awareness and advocate for rainforest conservation.
और शगुन, अगर बात की जाए दुनिया के सबसे बड़े वर्षावनों की, तो अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है।
ये Amazon Rainforest,
जी
right.
ये ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना समेत दक्षिण अमेरिका के विशाल क्षेत्रों को कवर करता है। ये 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है और अमेजन वर्षावन में अनगिनत अलग अलग प्रजाति के पशु रहते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका आपने और हमने नाम भी नहीं सुना होगा पहले।
राइट,
तो इतना ही नहीं, इस जंगल को 16,000 प्रजातियों से संबंधित लगभग 390 बिलियन पेड़ों का घर कहा जाता है। और इसके बाद आता है कांगो वर्षावन। ये मध्य अफ्रीका में स्थित है। इसके क्षेत्र में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन और अंगोला और दक्षिण सूडान के कुछ हिस्से शामिल हैं। 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर के अनुमानित आकार में ये वर्षावन फैला हुआ है। इस जंगल में लगभग 10,000 पौधों की प्रजातियां हैं और 1,000 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। कांगो वर्षावन में गोरिला, बोनोबोस और वन हाथियों जैसी ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जो कि अब लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। यानी एक तरह से कांगो वर्षावन ने इन प्रजातियों को भी जिंदा रखा हुआ है, अगर हम इम्पोर्टेंस देखें वर्षावनों की तो।
राइट, राइट।
और इसके बारे में तो डिस्कस मतलब क्या ही किया जाए कि कितना जलवायु संतुलन वर्षावन बनाकर रखते हैं। वर्षावन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके यानी एब्जॉर्ब करके पृथ्वी पर ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको बैलेंस रखते हैं और ये पृथ्वी के जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित, अगर किसी हद तक है ग्लोबल वार्मिंग, तो मेरे ख्याल से वो वर्षावनों की वजह से।
रेन फॉरेस्ट, राइट। एंड World Rainforest Day holds immense significance as it draws attention to the critical threats which we are facing, you know, globally. These threats include deforestation, as we were talking about it, illegal logging, habitat destruction, and climate change, right, which we are experiencing now a lot, which pose significant risk to the ecological balance and biodiversity of our planet. And by dedicating a day to raise awareness about these challenges, World Rainforest Day serves as a powerful platform to mobilize action and inspire sustainable practices that can help conserve these invaluable ecosystems. And World Rainforest Day, listeners, it is celebrated through a wide range of activities and events worldwide. These celebrations aim to educate people about the importance of rainforests and promote conservation initiatives and encourage sustainable practices. And now we will talk about some of the common activities, including tree planting campaigns. Tree planting campaigns are a very popular way to celebrate World Rainforest Day, right, Sefirozi? These campaigns encourage individuals and organizations and different communities to plant trees in their local areas or support reforestation efforts in regions which are affected by deforestation, right, Sefirozi?
Bilkul. Aur agar kehte hain ki shuruaat kisi bhi cheez ki acknowledgement ya knowledge se honi chahiye, to agar hum is bare mein World Forest Day ke mauke par varshavanon ko sanrakshit करने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकते हैं जिनसे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी, मतलब कि स्कूल विश्वविद्यालय हो गए और हमारे जो पर्यावरण संगठन होते हैं इसमें हम छात्रों और आम जनता को वर्षावनों के पारिस्थितिक महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिए वर्कशॉप कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं,
आर्ट एग्जीबिशन, फिल्म स्क्रीनिंग्स एंड डिस्कशंस ऑन रेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैन ऑल्सो बी यू नो दे कैन बी organized, right? And forests, listeners, they play a crucial role in sustaining and maintaining the planet's natural equilibrium and balancing the food cycle, so we should conserve rainforests.
Bilkul. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या कुछ खास है.
We'll start with Vishakhapatnam. A team of National Cadet Corps cadets, NCC, from Ladakh are in Eastern Naval Command, Vishakhapatnam, to understand the Indian Navy's role in national security and maritime interests. More on this from our correspondent.
A team of 30 NCC cadets from Ladakh arrived at Eastern Naval Command Vishakhapatnam for a 10-day visit to familiarize themselves with various aspects of the Indian Navy. The visit coincided with International Yoga Day, which they celebrated with a yoga session. The cadets received a comprehensive briefing on the Indian Navy's role, organization, and Eastern Naval Command's responsibilities. The visiting NCC cadets toured the Naval Air Station INS Dega, Vishakhapatnam, where they were briefed on naval air operations, air squadrons, and various aircraft. This visit provided them with a hands-on experience of the Indian Navy's aviation capabilities. During their stay, they will gain insight into Eastern Naval Command's maritime facets through visits to ships, submarines, and the air station at Vishakhapatnam. This visit aims to inspire and motivate the NCC cadets, fostering a better understanding of the Indian Navy's role in national security and maritime interests. Allu Murali, Akashwani News, Vishakhapatnam.
और 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल समाप्त हो गया. इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता अंकिता मुंबई से.
The 18th Mumbai International Film Festival bid its farewell with the best films from both national and international competition, winning prestigious awards at the closing ceremony held yesterday. The Golden Thread, directed by Nishtha Jain, bagged the coveted Golden Conch Award for the best documentary. The award carries a Golden Conch certificate and a cash prize of rupees 10 lakh. The film, The Golden Thread, is both an homage to and an observation of how the last vestiges of the industrial revolution were impacted by the forces of economic change. The film, adjudged as the best documentary of the South Asia's oldest and largest film festival for non-fiction, not only illustrates the relationship of man to machine, but also questions how capitalism values man as equal only to his labor. Renowned director and producer Bharat Bala, who headed the international jury panel, said,
"A great film resonates with collective experience, prompting us to reflect and encouraging us to discuss what we have witnessed. This is the social role of cinema. All of the members of the jury from diverse cultures reflected on the cinema of the world and finding common humanity. As a jury, we watched films in documentary, animation and short fiction sections from all corners of the world. Each film had a voice with a universal language. Some revealed an emerging ambition to innovate and play with traditional formats of storytelling. The films reflected the human cost of sweeping changes that's affecting our world today. Despite these challenges, we were also inspired by the narratives of cultural values around the world, which still play aliens of humanity that encourage us all to become better versions of ourselves. These films are merely a small part of a vast and vital entity identity known as culture. Culture is not a trivial adornment or a superficial addition to society. It does not exist on the periphery, but is central to our existence. Hence, focused investment and support for the creative industry is not only a necessary, but is a clear responsibility of the nations worldwide so as to allow individuals to contribute to keeping culture alive and relevant.
Nirjara, directed by Gaurav Patti, as a classroom project for International Institute of Design Ahmedabad, took home the award for Best Indian Animation Film. In the technical award section, Suraj Thakur bagged the Best Cinematography Award for the film Entangled. With fervor and enthusiasm, the 18th MIF brought down its curtains with the promise of a brighter return. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
And now on to Calicut. The Kerala State Water Transport Department is planning to introduce floating libraries in all its bows for weaning away the commuters from electronic devices like mobile phones and tablets because of the addictive nature of the mobile devices, which has reshaped individual reading habits and behaviors. Mobile addiction has significantly changed how individuals seek information and spend their leisure time. A report by our Kochi correspondent.
The idea of a floating library or Pustakathoni was first introduced a year ago by the State Water Transport Department in a ferry boat operating in the Vembanad Lake between Muhamma in Alappuzha and Kumaragam in Kottayam district. The idea originated from the realization that a 45-minute journey presented a perfect opportunity to cultivate a reading habit among commuters. It soon became a success, benefiting several hundreds of daily commuters, many of whom are school and college-going students and elderly people. The books were collected from people living in the vicinity and also from schools. The project is aimed at bringing back reading habit and help people to strike a balance between harnessing the benefits of technology and the intellectual benefits of reading books. The Pustakathoni initiative will soon be introduced in many ferry boats in Ernakulam, Alappuzha, Kollam and Kottayam. As the initiative expands, it is expected to foster a lifelong appreciation for literature and promote the culture of reading to enrich the lives and minds in the digital era. Raj Mohan, Akashwani News, Kochi.
And now, time for our defense news capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense, in which you will listen to the excerpts of the interview of CMD, BEML, the Defense PSUA, Mr. Shantanu Roy, on the Maiden Armed Forces BEML Synergy Meet held last night in New Delhi. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
The Maiden Armed Forces BEML Synergy Meet was organized yesterday evening in New Delhi. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan inaugurated the first of its kind meet, and it was attended by Chief of the Air Staff Air Chief Marshal V.R. Chaudhary along with senior officials from Army, Navy, Air Force and Coast Guard. We spoke to CMD of BEML, Shri Shantanu Roy, about the Synergy Meet. Here are the excerpts. What were the objectives of this first Armed Forces BEML Synergy Meet?
This Synergy Meet was basically organized to understand the future aspirations, the future requirements of the armed forces for the security of the country, and also to, you know, make the armed forces aware of what we are currently doing and what we are planning to do in the future. So that's the reason we called it a Synergy Meet, so that we can synergize our efforts with the requirements of the user. That was a basic need which was felt for organizing such an event, which I understand is the first of its kind which has been organized by any DPSU till now.
As the meet concludes, what are the outcomes you find of this crucial DPSU Armed Forces Synergy Meet?
Several very critical information we have received. One is the feedback on the sustenance, which we were already aware to a certain extent, and the shortcomings that we have in our products in terms of quality, in terms of deliverance. So we are definitely working on it. But most importantly, we have come to know the requirements, the real requirement where the armed forces are facing a challenge as far as the indigenization is concerned, as far as the indigenous availability of critical aggregates and components and child parts is concerned. So now we can focus on these areas, we can decide which area to work on, and we cannot have the 100% of these requirements to be met by a single company called BML, but we will endeavor to zero in on some specific requirements where we can work on.
While assuming the office for the second consecutive term, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh outlined the target of defense exports to be 50,000 crore rupees in next 5 years. How do you see BEML contributing to it?
Our commitment to exports has been there for the last 40 years, and we have exported to more than 71 countries. As far as defense exports are concerned, we have already exported a little bit to countries like Suriname and Bhutan, etc. With the new impetus, with the boost, with the focus of the government through the Defense Production and Export Promotion Policy 2020, we definitely will increase our contribution towards the defense exports. Presently, the defense exports are at a level of around 38,000 crores, which very shortly we should reach around 50,000 crore, and BML will act as a major contributor to it. We already are supplying or contributing through our platforms for several major export projects, where we have collaborated with other DPSUs and other private sector companies for exporting major Indian platforms.
For Parikrama, this is Anand Saurav from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
June 22, 1900 is the birth anniversary of freedom fighter Ganesh Ghosh. His family hailed from Chittagong, now in Bangladesh. Ganesh Ghosh was an active member of the Chittagong Jugan Terpate. He participated in the Chittagong Armory Raid, along with Surya Sen and other revolutionaries on 18th of April 1930. He was later arrested by the police, and after the trial, Ganesh Ghosh was deported to the cellular jail in Port Blair in 1932. He remained in the cellular jail for 14 years.
After his release from jail in 1946, he became a leader of the Communist Party. He was elected to the West Bengal Legislative Assembly in 1952, 1957, and 1962 as a Communist Party of India candidate from Belgaum. He also served as a member of the 4th Lok Sabha in 1967. Ganesh Ghosh continued to work for the nation till his last breath. We salute the brave nationalist.
Also on 22nd of June 1897, the Chapekar brothers shot the British Plague Commissioner W.C. Rand. The brothers, namely Damodar Hari, Balakrishna Hari, Vasudeva Hari, belonged to Chinchwad in the city of Pune, India. When the bubonic plague hit India in 1896-97, the government had set up a special plague committee for managing the pandemic, whose commissioner was Walter Charles Rand.
Senapati Rand bedarkar, lokanvar zulum atyachar, dushtani tisa hota sarkar ji, dushtani tisa hota sarkar ji.
Commissioner Rand took barbaric steps in the name of preventive measures. Troops were brought in to deal with the emergency. The measures employed included entry into private houses, stripping and examination of occupants, including women, by British officers in public, evacuations to hospitals and segregation camps. He even refused to pay heed to religious sentiment and enter temples and mosques. These measures were considered oppressive by the populace of Pune, and complaints were ignored by Rand. Thus, to put an end to the injustice borne by the people of Pune, the Chapekar brothers decided to take revenge.
Damodar pahila krantikari, ladayachi karto tayari, mardachi mardanagi kari, haji, ji, ji, mardachi mardanagi kari, haji.
On the occasion of the Diamond Jubilee of the coronation of Queen Victoria, on 22nd of June 1897, Rand and his military escort, Lieutenant Iyest, was shot by the Chapekar brothers. Iyest died on the spot, and Rand died of his wounds on 3rd of July. The Chapekar brothers and their two supporters were charged with the murders. All three brothers were found guilty and hanged.
We also remember freedom fighters Mam Raj and Ram Swaroop, who belonged to District Bhiwani of Haryana. They joined the British Indian Army but resigned after some time and took part in Kisan activities from 1931 to 1935. They were involved in an attack on the British police. They were also involved in the murder of an informer of the Nawab.
They remained underground for some time, reached Ambala cantonment and stayed there with some soldiers from their villages. Finally, they were arrested in June 1937 and sent to Luharu Fort and charged with murder and dacoity. Mamraj and Ram Swarup were hanged on 22nd of June 1938.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी ने तुर्की में अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 में कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला टीम ने आज एस्टोनिया को 232-229 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इस सीजन में क्लीन स्वीप पूरा किया और कंपाउंड टीम स्पर्धा में विश्व कप के सभी तीन स्वर्ण पदक जीत लिए हैं।
In cricket, India will take on Bangladesh in their second Super 8 clash of Men's T20 World Cup this evening in Antigua. Today's match holds immense importance as India strives to secure a spot in the final four before their crucial encounter with Australia on Monday, while for Bangladesh, another loss would mark the end of their journey in the tournament. Early in the day, the host, West Indies, convincingly defeated the USA by 9 wickets at the Kensington Oval in Barbados.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, सबसे पहले आज हम याद कर रहे हैं एलवी प्रसाद को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये भारतीय सिनेमा के एक सफल फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में याद किए जाते हैं। एलवी प्रसाद दक्षिण भारत की विभिन्न भाषाओं के अलावा हिंदी फिल्मों में भी सफल रहे थे। उन्होंने सामाजिक उद्देश्यों के साथ कई मनोरंजक फिल्में बनाई। वहीं अभिनेता के तौर पर एलवी प्रसाद ने भारत की तीन भाषाओं की पहली बोलती फिल्मों में काम किया। शगुन, इन्होंने हिंदी की जो पहली बोलती फिल्म थी आलमारा, तमिल की पहली बोलती फिल्म कालिदास और इसी तरह तेलुगु की भक्त प्रहलाद फिल्म में अभिनय किया। एलवी प्रसाद की फिल्म छोटी बहन में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ये गीत भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना बेहद लोकप्रिय हुआ था।
राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना भैया।
And we are also remembering James Horner, American film composer. He wrote the score of many films and television productions such as Titanic, Avatar, Aliens, An American Tale, Field of Dreams, Apollo 13, Braveheart, A Beautiful Mind and House of Sand. And most popularly, he is remembered from the score My Heart Will Go On.
और आज जिस शख्सियत का जन्मदिन है श्रोताओं, उनके बारे में हम क्या आपको बताएं, आप उनकी मशहूर फिल्म का ये डायलॉग सुन लीजिए।
मोगेम्बो, खुश हुआ
डागा तेजा, ये करोड़ों रुपया दूसरी तबाहियों और बर्बादियों के काम में लगाते रहो। हिंदुस्तान में ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये लूटमार, ये दंगे, ये फसाद, ये हंगामे, ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगेम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंगमंच और हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायक अभिनेता अमरीश पुरी की। चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों की दुनिया के एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं और इन्होंने खासतौर पर विलन के रूप में अपनी पहचान बनाई है।
And friends, it's the birthday of Meryl Streep, American actress who worked in films The Others, The Devil Wears Prada, Julie and Julia, It's Complicated, Into the Woods and many more.
और अब श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए सर फिरोजी और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com पर।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ज्वाइनिंग अस।
नमस्कार।
नमस्कार।